हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मानिया को उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। सालों पहले हुए छाया राणा, कृतिका और शांतनु सिंघानिया के एक्सीडेंट के पीछे वरदान और मानिया का ही नहीं बल्कि एक तीसरे शख्स का भी इन्वॉल्वमेंट था, और वो था सुल्तान, जो किसी की भी सुपारी लेकर उसे बेरहमी से मार दिया करता था। बंधन के मरने के बाद योग थोड़ा इमोशनल हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि बंधन की मौत उसकी वजह से हुई है। कृषा उसके पास आई और युग को समझाया कि उसे आगे बढ़ना होगा। तब युग को रियलाइज हुआ कि अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। युग के जाने के बाद कृषा वहां बैठकर फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। तभी लगभग आधे घंटे बाद युग दूसरे कमरे से बाहर निकला। उसने फुल ब्लैक सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर वही एटीट्यूड था और आंखों में कोई भाव नहीं। युग को इस तरह देखकर कृषा के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो उसके पास बढ़ते हुए बोली, अपना बदला पूरा करने जा रहे हो? युग ने कृषा की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ, और वो बहुत खतरनाक इंसान है। अब तक उसे सब पता चल गया है, तो वो तैयारी करके बैठा होगा। मुझे आने में टाइम लगेगा, अपना और ध्रुव का ख्याल रखना। बाहर जाने से पहले युग ने कृषा को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें बंद थी और वो कृषा को महसूस कर रहा था। अनजाने में ही सही युग की आंखों के सामने वो सारे सीन घूमने लगे कि कैसे सारा को किडनैप करने के चक्कर में गलती से कृषा भी उसके साथ आ गई थी। पहले उन दोनों का रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। युग को कृषा पसंद थी, पर वो अपने मकसद के चलते खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल किए हुए था। फिर कृषा की सच्चाई का पता चलना और उन दोनों की अचानक शादी होना। धीरे धीरे कृषा युग के साथ में कंफर्टेबल हो गई और आज उनका प्यार इस हद तक पहुंच चुका था कि उनके एक 4 साल का बेटा भी था। युग अपने ख्यालों में खोया था, तभी कृषा की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। कृषा ने धीरे से कहा, हम कितना आगे आ गए हैं ना युग, किसने सोचा था कि किस्मत हमें इस तरह साथ रखेगी। लंदन में तुम्हारे विला में पहला कदम रखते ही दिमाग में ये चल रहा था कि इस शख्स की मुझे शक्ल भी नहीं देखनी, और अब देखो ना, तुम्हें देखे बिना इन आँखों को सुकून नहीं मिलता। कृषा की बात सुनकर युग के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कृषा से अलग हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भर कर कहा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि तुम पहली नज़र में ही मुझे अच्छी लगी थी। अपने मकसद के चलते मैं सारा के साथ ज़रूर रहता, लेकिन इतना तय है कि तुम्हें पाकर रहता कृष। अपनी बात खत्म करके युग ने कृषा के होठों को कैप्चर किया और उसे काफ़ी सॉफ्टली किस कर रहा था। कृषा और युग अपने मूवमेंट में खोए हुए थे, तभी वहाँ ध्रुव आया। उन दोनों को इस तरह साथ में देखकर उसने कुछ नहीं कहा, बस कृषा और युग के पास में आकर धीरे से उन दोनों का हाथ पकड़ लिया। ध्रुव के हाथ पकड़ने पर कृषा और योग एक दूसरे से अलग हुए। अचानक ध्रुव को वहां देखकर दोनों इधर उधर देखते हुए नजरें चुराने लगे। फिर कृषा ध्रुव के पास घुटनों के बल बैठी और कहा, आप किसी भी बड़े के रूम में जाओ तो डोर नॉक किया करो। लेकिन मैं तो आप दोनों के रूम में आया हूँ, किसी और के रूम में नहीं, ध्रुव ने जवाब दिया। फिर उसने युग को नीचे झुकने का इशारा किया। जैसे ही युग उसके पास नीचे झुका तो उसने जल्दी से उसके गाल पर किस कर लिया और कहा, आई लव यू सो मच डैड, मैं आपका नाम और पोजीशन और भी आगे लेकर जाऊंगा। ध्रुव सिर्फ 4 साल का था। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर युग और कृषा दोनों हैरानी से देख रहे थे। युग ने ध्रुव को गोद में उठाकर कहा, और तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें करना किसने सिखाया? तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे डैड को अपने नाम और पोजिशन को हैंडल करना आता है। मुझे बड़े दादू ने कहा, ध्रुव ने जवाब दिया। यहाँ वो हर्षवर्धन राणा की बात कर रहा था। ध्रुव आगे बोला, दादू ने कहा कि आपकी पोजीशन एक किंग की है और मैं एक प्रिंस हूँ, बस दुनिया थोड़ी अलग होगी। देखना, जब मैं किंग बनूंगा तब मैं वो दुनिया पूरी तरह बदल दूंगा। ध्रुव इसे किसी कहानी की तरह ले रहा था, जैसे अक्सर बच्चे सुना करते हैं। युग उसे कुछ कहता उससे पहले कृषा बीच में बोल पड़ी, बिल्कुल, एक दिन वो पोजीशन तुम्हें ही संभालनी है। तुम्हारे डैड ने सब कुछ बहुत मेहनत से हासिल किया है, तो तुम्हें उसे मेंटेन करके रखना ही होगा और तुम्हें बिल्कुल अपने डैड की तरह बनना है। कृषा की बात सुनकर युग ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, रियली? तुम इसे मेरे जैसा बनाने का सोच रही हो, जबकि इसके पैदा होने से पहले ही तुम ये बोलती थी कि मेरा बेटा तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहिए, इमोशनल लेस और पता नहीं क्या क्या कहती रहती थी। तब मुझे दुनिया की इतनी समझ नहीं थी, कृषा ने युग की तरफ देखते हुए जवाब में कहा। तुम बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह, तुम्हारी तरह ही होना चाहिए ताकि कोई भी तुम्हें हर्ट ना कर सके, और देखना, मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बनेगा। ध्रुव और कृषा के साथ थोड़ा टाइम बिताने के बाद युग वहां से निकल गया था। आखिर उसे एक बड़ी और लंबी जंग लड़नी थी। युग के साथ में मलिक था और इस वक्त वो दुबई के लिए निकल रहे थे। आखिर सुल्तान वहीं पर तो रहता था। वहीं दूसरी तरफ युग अपने पीछे से पूरा प्लान बनाकर गया था कि कैसे सम्राट मल्होत्रा को जड़ से उखाड़ना है। उसके जाने के बाद हरलीन और शब्द मिलकर उसके बनाए प्लान पर काम करने लगे। सारा भी उनका पूरा साथ दे रही थी, जबकि कृषा और मीरा मिलकर चारों बच्चों को संभाल रही थी। अगले दिन युग और मलिक दुबई सुल्तान के इलाके में पहुंचे। वो अकेले नहीं थे, क्योंकि सुल्तान सुपारी लेकर लोगों की जान लेता था, तो उसकी अच्छी खासी फौज थी और उसे निपटने के लिए युग को भी आदमियों की जरूरत थी। सुल्तान ने तो कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, लेकिन उसका मैनेजर पहले से ही इसके लिए तैयार था। वो जानता था कि अगर डेविल को उसके बारे में शक हो गया तो वो इतनी आसानी से उसे छोड़ेगा नहीं। सुबह के समय सुल्तान अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा था, तभी युग ने अपने आदमियों के साथ मिलकर सीधा सुल्तान के घर पर धावा बोल दिया था। सुल्तान का घर बाहर सिक्योरिटी गार्ड से घिरा हुआ था, फिर भी युग के आदमियों और युग ने डायरेक्ट गोलीबारी करनी शुरू कर दी थी। बाहर जब बुलेट की आवाज सुनाई दी, तब सुल्तान अचानक से खड़ा हुआ। उसने गुस्से में कहा, इतनी औकात किसकी हो गई जो सुल्तान पर हमला बोल रहा है? उसी की जिसके खिलाफ आपने सालों पहले प्लानिंग की थी। चिंता मत कीजिए, मैंने बाहर इतने गार्ड्स खड़े किए हैं कि युग राणा चाहकर भी नहीं जीत पाएगा। वैसे भी वो अपने साथ आदमी लेकर नहीं चलता, खुद ही लड़ने में यकीन रखता है। उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस आज उसकी जान ले ही लेगा, सुल्तान के मैनेजर ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। सुल्तान भी उसके जवाब से खुश हो गया। उसका अच्छा खासा भरा पूरा परिवार था। सुल्तान ने उनकी तरफ देखकर कहा, इस घर का सबसे सुरक्षित हिस्सा अंडरग्राउंड एरिया है, इन सबको वहीं पर पहुंचाओ। बाकी लगता है आज डेविल को मरने का शौक चढ़ा है। सुल्तान ने अपनी फैमिली को सुरक्षित करने के बाद अपनी गन्स ली और अपने मैनेजर के साथ बाहर निकला। सुल्तान बाहर जाता उससे पहले मैनेजर ने कहा, मैंने कुछ और ही प्लान किया है। पूरे घर में बम लगाए हुए हैं, हम पिछले दरवाजे से पूरे परिवार सहित सुरक्षित निकल जाते हैं। युग राणा अंदर तो आएगा ही, तब बम एक्टिवेट करके उसे उड़ा देंगे। माशाल्लाह, क्या प्लान बनाया है तुमने, सुल्तान खुश होकर बोला। मैनेजर ने पूरे विला के अंदर लगे हुए बम को एक्टिवेट कर दिया था, जो 10 मिनट में फटने वाले थे। वो अपने परिवार को वहां से लेकर निकलने ही वाला था कि युग वहां अंदर आ गया। बाहर उसके आदमियों की भी जान गई थी, लेकिन सुल्तान के आदमियों को उसने मार गिराया था और इस वक्त युग इतना गुस्से में था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर आते ही उसने एक एक को शूट करना शुरू कर दिया। बस उसने सुल्तान के बच्चे और बीवी को कुछ नहीं किया। युग किसी इनोसेंट को सजा देने के पक्ष में नहीं था, खासकर कि अगर वो कोई औरत या बच्चा हो।
मैनेजर और बाकी आदमियों को मारने के बाद युग सुल्तान के पास आया और उसका गला दबाकर कहा, क्या लगा था तू इतनी आसानी से मेरी गिरफ्त से छूट जाएगा? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो युग, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पूरे विला में बम लगे हैं और सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, हम दोनों सुरक्षित निकल सकते हैं अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो। जान खतरे में देखकर सुल्तान सब कुछ उगलने को तैयार था, लेकिन युग मानने वाला नहीं था। उसने सबसे पहले सुल्तान के पैर पर गोली मारी। वो दर्द से चिल्ला पड़ा, तुझे मारने के लिए मुझे खुद भी मरना पड़े तो मुझे अफसोस नहीं होगा। मेरी मॉम ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। देख, तुझमें और मुझमें यही फ़र्क है कि मैंने तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं किया और तुमने बेवजह मेरी मॉम को टारगेट किया जो इनोसेंट थी। बोलते हुए युग ने गुस्से में सुल्तान के मुंह पर जोरदार पंच मारा। वो नीचे गिरा हुआ था। युग नीचे झुका और उसके बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हारी वजह से 2 मासूम बच्चे अनाथ हो गए थे, उनकी मासूमियत छिन गई थी। देखना, तेरे बच्चे भी तेरे बिना अनाथ हो जाएंगे। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा एक बच्चा सिर्फ 6 महीने का है, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। अब तक तुम्हारे पास सिर्फ 7 पड़ाव कब्जे में हैं, जबकि दुनिया में 3 और पड़ाव मौजूद हैं जो उन 7ों पड़ाव के साथ मिलकर तुम्हें और ताकतवर बना सकते हैं। वो एक ऐसे शख्स के कब्जे में है जो सामने नहीं आना चाहता, लोगों के सामने शरीफ बनकर रहता है। दिल्ली में रहता है वो, प्रतीक रायचंद नाम है उसका। डर के मारे सुल्तान को जो भी पता था वो युग को बताई जा रहा था, लेकिन युग पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। सुल्तान आगे कुछ बोलता उससे पहले युग ने उसके मुंह को गोलियों से भर दिया। जैसे ही सुल्तान के मैनेजर ने टाइम सेट किया था, वैसे ही पूरा विला एक बड़े ब्लास्ट में ढह गया था। बाहर मलिक और युग के बचे हुए आदमी थे, उन्होंने सुल्तान की 2 बीवियों और बच्चों को बाहर निकाल दिया था। युग वहां अंदर फंसा हुआ था और इस ब्लास्ट को देखकर उसके होश उड़ गए। एक पल के लिए वहां चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मलिक नम आंखों से बोला। तभी उसने देखा कि मेन गेट से युग बाहर निकल कर आ रहा था, चेहरे पर वही एटीट्यूड और आंखों में सुकून। आखिर उसने अपनी मॉम के कातिल को पकड़कर अपना बदला पूरा कर ही लिया था। ये दुनिया मेरी है और मैं इसका बादशाह हूँ, चाहे 7 पड़ाव हों या 3, हुकूमत हमेशा युग राणा की रहेगी। आने वाला कल अपनी कहानी खुद लिखेगा, ध्रुव राणा की कहानी। वो होगा इस माफिया की दुनिया का नया किंग। कहानी में इष्ट भी होगा तो रश्क भी, युग ने धीरे से अपने मन में कहा। उसके दिमाग में ध्रुव की बातें चल रही थी कि वो उससे भी बड़ा मुकाम हासिल करेगा। तो अब वक्त आ गया था जब युग के बजाय ध्रुव उन 10ों पड़ाव का बादशाह बने और इस माफिया की दुनिया को संभाले।